उज़ात छठा बाब जिदौन।
और बनी इसराइल ने खुदावंद की निगाह में फिर बदी की, तो खुदावंद ने उन्हें 7 बरस तक मिध्यान के हवाले किया, और मिध्यान का हाथ बनी इसराइल पर कवि हुआ। तो बनी इसराइल ने मिध्यान के मुकाबले अपने लिए पहाड़ में गारें, मोर्चे और कले बनाए। और ऐसा हुआ कि जब इसराइल कुछ बोते थे तो मिध्यानी और अमालिकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ाई करने को निकल आते थे और उनके मुकाबले खैमे खड़े करते और मुल्क के गल्ला को गजा के मदखल तक बर्बाद करते थे। और इसराइल के लिए ना कुछ खुराक, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना कोई गदा रहने देते थे, क्योंकि वो अपने मवाशी और अपने खैमों समेत टिड्डी की तरह कसरत से आते थे, यहां तक कि उनका और उनके ऊंटों का शुमार ना होता था। वो मुल्क में दाखिल होते और उसे खराब करते थे, इसलिए इसराइल मिध्यान के सामने नहायत पस्त हुए और बनी इसराइल खुदावंद के आगे चिल्लाए। और जब बनी इसराइल मिध्यानियों के सबब से खुदावंद के आगे चिल्लाए, तो खुदावंद ने बनी इसराइल के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ा लाया और मैंने तुम्हें जाए गुलामी से निकाला और तुम्हें मिस्रियों के हाथ से और तुम्हारे सब सताने वालों के हाथ से छुड़ाया और उन्हें तुम्हारे सामने से निकाल दिया और उनका मुल्क तुम्हें अता किया। और मैंने तुमसे कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, चुनांचे तुम अमूरियों के माबूदों से जिनके दरमियान तुम उनके मुल्क में बसते हो मत डरो, लेकिन तुम मेरी आवाज़ के शिनवा ना हुए। और खुदावंद का फरिश्ता आया और उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो योआश अभी आज़री का था बैठा, और उसका बेटा जिदून कोहलू के पास गेहूं झाड़ रहा था के मिध्यानियों से छुपाए रखे। तो खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई दिया और उससे कहा, ऐ बहादुर मर्द, खुदावंद तेरे साथ है। जिदून ने उससे कहा, ऐ मेरे आका, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो ये तमाम हादसे हम पर क्यों वाके हुए और वो सब मौजज़े उसके कहाँ हैं जिनकी बाबत हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया और कहा कि खुदावंद हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया और अब खुदावंद ने हमें छोड़ दिया और मिध्यान के कब्जे में कर दिया। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर निगाह की और उससे कहा कि अपनी कुव्वत में जा और इसराइल को मिध्यान के हाथ से रिहाई दे, देख मैंने तुझे भेजा है। तो जिदून ने उससे कहा, ऐ मेरे आका, मैं इसराइल को कैसे रिहाई दूंगा, मेरा घराना मनस्से में सबसे हकीर घराना है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। तो खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, मैं तेरे साथ हूंगा और तू मिद्यान को एक ही आदमी की तरह मारेगा। तब उसने उससे कहा, अगर मैं तेरे नजदीक मंजूर नजर हूं तो मुझे इस बात का कोई निशान दे कि तू ही है जिसने मेरे साथ कलाम किया, जब तक कि मैं तेरे पास ना लौटूं और अपना हदिया निकाल ना लाऊं और तेरे आगे ना रखूं, तब तक तू यहां से ना जा। तो उसने उससे कहा कि जब तक तू ना लौटे मैं यहां ठहरूंगा।
और जिदौन अंदर गया और एक बकरी का बच्चा और एक एफा आटे की फतीरी रोटियां तैयार की और गोश्त उसने चंगेर में रखा और गोश्त का शोरबा एक कटोरे में डाला और ये सब कुछ लेकर बलूत के दरख्त के नीचे आया और उसके आगे गुजराना। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि गोश्त और फतीरी रोटियों को लेकर उस चट्टान पर रख और शोरबा उस पर उंडेल। तो उसने ऐसा ही किया। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उस असा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ तो उस चट्टान में से आग निकली और गोश्त और फतीरी रोटियों को खा गई और खुदावंद का फरिश्ता उसकी आंखों से गायब हो गया। तब जिदौन ने जाना कि वो खुदावंद का फरिश्ता था। तो जिदौन ने कहा, ऐ मालिक खुदावंद, मैंने खुदावंद के फरिश्ते को रूबरू देखा। तो खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, क्योंकि तू ना मरेगा। तब जिदौन ने वहां पर खुदावंद के लिए एक मजबा बनाया और उसे यहोवा शालूम कहा और वो आज के दिन तक अभी आजारियों के उफ्रा में मौजूद है। और उसी रात यूं हुआ कि खुदावंद ने उससे कहा कि अपने बाप का बैल यानी दूसरा बैल जो 7 बरस का है ले और बाल के मजबा को ढा दे और खंबे को जो उसके पास है काट डाल और खुदावंद अपने खुदा के लिए गढ़ी की चोटी पर कायदे के मुताबिक एक मजबा बना और बैल को लेकर उसकी सोख्तनी कुर्बानी और उस खंबे की लकड़ी पर गुजरान जो तूने काट डाला होगा। तब जिदौन ने अपने गुलामों में से 10 आदमी लिए और जैसा कि खुदावंद ने उसे फरमाया था किया। और चूंकि वो ये काम दिन के वक्त करने से अपने बाप के घराने और शहर के लोगों से डरा तो उसने ये काम रात के वक्त किया। और शहर के लोग जब सुबह सवेरे उठे तो देखा कि बाल का मजबा ढाया हुआ है और उसके पास का खंबा काटा गया है और उस मजबा पर जो बनाया गया बैल चढ़ाया हुआ है। और उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह काम किसने किया? और उन्होंने दरियाफ्त किया और कोशिश की तो उनसे कहा गया कि जिदौन बिन युआश ने यह काम किया। तब शहर के लोगों ने युआश से कहा कि अपने बेटे को बाहर निकाल ला ताकि वो कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने बाल का मजबा ढाया और उसके पास का खंबा काट डाला। तब युआश ने उन सब को जो उसके सामने खड़े थे कहा, क्या तुम बाल के लिए झगड़ते हो या उसे बचाना चाहते हो? जो कोई उसके लिए झगड़ता हो कल तक मारा जाए। अगर वो खुदा है तो वो अपने लिए आप ही झगड़े, क्योंकि किसी ने उसके मजबा को ढा दिया है। तो उस रोज उसने उसका नाम यरूब बाल रखकर कहा कि बाल आप ही उससे झगड़ा करे, क्योंकि उसने उसके मजबा को ढाया है। तब सारे मिद्यानी और अमालीकी और अहले मशरिक बाहम जमा हुए और पार उतरे और वादिये यज़रईल में डेरे लगाए और रूहे खुदावंद जिदौन पर नाजिल हुई। तो उसने नरसिंगा फूंका और अबी आजार के लोग निकले और उसके पीछे पीछे चले। तब उसने सारे मनसे के पास कासिद भेजे तो वो भी जमा हुए और उसके पीछे हो लिए। और उसने आशीर اور زبلون اور نفتالی کے پاس بھی قاصد بھیجے، تو وہ اس کے ملنے کو نکل آئے، اور جدون نے خدا سے کہا، اگر تو بنی اسرائیل کو میرے ہاتھ سے رہائی دلانا چاہتا ہے جیسا کہ تو نے کہا، تو دیکھ میں اون کی کترن کھلیان میں رکھ دیتا ہوں، تو اگر صرف کترن پر ہی اوس پڑے اور ارد گرد کی زمین سوکھی رہے تو میں جانوں گا کہ تو اسرائیل کو میرے ہاتھ سے رہائی دے گا جیسا کہ تو نے کہا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب اگلے دن وہ صبح کو اٹھا تو اس نے کترن کو نچوڑا تو اس میں سے پیالہ بھر پانی نکلا۔ پھر جدون نے خدا سے کہا کہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو کہ صرف ایک دفعہ میں اور بولوں گا، اور اب کی بار بھی کترن سے آزمائش کروں گا کہ صرف اون کی کترن خشک رہے اور ساری زمین پر اوس ہو۔ چنانچہ خداوند نے اس رات کو ایسا ہی کیا کہ صرف کترن ہی خشک رہی اور ساری زمین پر اوس پڑی۔